एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार ज्ञान गोष्ठी में, आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली और हाँ कभी कभी थोड़े विवादास्पद भी रहे अमेरिकी दार्शनिक जॉन रोगसील पर बात करने वाले हैं।
नमस्कार। हाँ सियर्ड, एक ऐसा नाम जिन्होंने हमारे सोचने के तरीकों पर, खासकर मन, भाषा और समाज को लेकर एक गहरी छाप छोड़ी है।
बिल्कुल, उनके विचार सिर्फ किताबी बहसों में ही नहीं फंसे रहे बल्कि उन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि हम इंसान, हम अपनी दुनिया बनाते कैसे हैं।
हाँ, मतलब भाषा से, अपने विश्वासों से और यहाँ तक कि हमारे दिमाग की जो बनावट है उससे। तो आज हम उनके इन्हीं गहरे विचारों में उतरने की कोशिश करेंगे।
तो आज का अपना एजेंडा क्या है? हम जॉन सील के जीवन को समझेंगे, उनके जो सबसे ज्यादा चर्चित विचार हैं उनको देखेंगे,
जैसे स्पीच एक्ट थ्योरी।
हाँ, और वो उनका मशहूर चाइनीज रूम वाला तर्क।
बिल्कुल, जो एआई पर सवाल उठाता है।
और ये भी कि हम सब मिलकर ये सामाजिक सच्चाइयां कैसे बनाते हैं, जैसे पैसा या सरकार। और देखेंगे कि भाई आज के जमाने में उनके विचारों की क्या अहमियत है।
तो शुरू करते हैं उनके समय से, है ना। सर्ल का जो बौद्धिक विकास हुआ वो हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के माहौल में।
अच्छा।
ये वो टाइम था जब फिलॉसफी, खासतौर पर एनालिटिक फिलॉसफी, मतलब विश्लेषणात्मक दर्शन, एक नए फेज में जा रही थी।
और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज का रोल बढ़ रहा था शायद।
हाँ बिल्कुल, अमेरिकी विश्वविद्यालय दुनिया भर के दार्शनिकों के लिए एक तरह के सेंटर बन रहे थे।
तो उस वक्त माहौल कैसा था, मतलब कौन से बड़े विचार हवा में थे?
देखिए, कई तरह के विचार थे। एक तो था लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जो कहता था कि भाई वही बात सच्ची है जिसे आप लॉजिक या अनुभव से प्रूव कर सके।
ठीक है।
दूसरी तरफ, खासकर ऑक्सफोर्ड में, साधारण भाषा दर्शन यानी ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलॉसफी का बड़ा जोर था।
अच्छा, ये क्या था?
इनका मानना था कि दर्शन की जो बड़ी बड़ी गुत्थियां हैं ना, वो अक्सर इसलिए उलझ जाती हैं क्योंकि हम भाषा को ठीक से समझते नहीं।
दिलचस्प।
और इसी सबके बीच टेक्नोलॉजी भी बदल रही थी, कंप्यूटर्स आ रहे थे।
हाँ।
मनोविज्ञान में एक तरह की क्रांति चल रही थी जिसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं, मतलब दिमाग कैसे काम करता है, इस पर फोकस बढ़ रहा था।
और एआई की शुरुआत भी हो रही थी।
हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें शुरू हो गई थी। इन सब चीजों ने मिलकर सर्ल के काम के लिए, कह सकते हैं, एक स्टेज तैयार किया।
उनके समय के और कौन बड़े दार्शनिक थे जिनसे उनका इंटरेक्शन रहा होगा?
कई बड़े नाम थे, WVO क्विन थे, डोनाल्ड डेविडसन, हिलेरी पटनम, डेनियल डेनेट, ये सब उनके समकालीन थे। लेकिन शायद सबसे गहरा असर तो उनके गुरु का पड़ा,
जेएल ऑस्टिन, ऑक्सफोर्ड वाले।
हाँ, जेएल ऑस्टिन, जिन्होंने भाषा के कामों पर, स्पीच एक्ट्स पर शुरुआती काम किया था। सियर ने उसी काम को आगे बढ़ाया।
तो सील की अपनी कहानी कहाँ से शुरू होती है?
जॉन रोगर्स सेरल का जन्म हुआ 1932 में डेनवर, कोलोराडो में। एक मिडिल क्लास परिवार था, पढ़ने में वो शुरू से ही काफी तेज थे। विस्कॉन्सिन मैडिसन यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर उन्हें मिली वो बहुत ही प्रेस्टिजियस रोड स्कॉलरशिप।
अच्छा, जिससे वो ऑक्सफोर्ड गए।
बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड पहुंचे और वहां जे एल ऑस्टिन के अंडर काम किया। भाषा दर्शन की नींव वहीं पड़ी उनकी। 1959 में डॉक्टरेट पूरी कर ली
और फिर वो अमेरिका लौट आए।
हाँ, और आते ही 1959 में ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में फैकल्टी ज्वाइन कर ली। और मजे की बात है, लगभग अपना पूरा एकेडमिक करियर उन्होंने वहीं बिताया।
बर्कले तो 60s के दशक में छात्र आंदोलनों के लिए भी जाना जाता है।
हाँ, वो बहुत उथल पुथल का दौर था और सीरल की पोजीशन बड़ी दिलचस्प थी। वो छात्रों के मुद्दों का, खासकर फ्री स्पीच मूवमेंट का समर्थन करते थे।
अच्छा।
हाँ, वो पहले टेन्योर्ड प्रोफेसर थे जिन्होंने खुलकर समर्थन किया, लेकिन वो हिंसा या तोड़फोड़ वाली रणनीतियों के सख्त खिलाफ थे।
तो मतलब एक स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति थे।
बिल्कुल, उनकी अपनी एक लाइन थी। और फिर आया वो साल 1980 जब उन्होंने अपना वो फेमस चाइनीज रूम तर्क पेश किया।
हाँ, जिसकी बात हम कर रहे थे, इससे तो वो काफी मशहूर हो गए होंगे।
बहुत, अकादमिक दुनिया से बाहर भी लोगों ने जानने लगे। वो स्ट्रॉन्ग एआई के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक बन गए। स्ट्रॉन्ग एआई मतलब ये विचार कि कंप्यूटर सचमुच सोच और समझ सकते हैं।
उन्हें सम्मान भी काफी मिले होंगे अपने काम के लिए।
हाँ, जाहिर है, बर्कले में उन्हें मिल्स प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी का पद मिला, जीन निकोड प्राइज मिला, नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल मिला, कई सम्मान मिले। और उन्हें अक्सर एनालिटिक और कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी के बीच एक पुल की तरह भी देखा जाता है।
लेकिन उनके करियर के आखिर में कुछ विवाद भी जुड़े हैं ना।
हाँ, ये बताना भी जरूरी है, 2017 के आसपास उन पर यौन उत्पीड़न के कुछ गंभीर आरोप लगे थे।
ओह।
मामला कोर्ट तक भी गया और 2019 में यूसी बर्कले ने उनसे उनकी प्रोफेसर एमेरिटस की जो मानद उपाधि थी वो वापस ले ली।
ये जानना जरूरी है, भले ही ये उनके दार्शनिक काम से सीधे तौर पर जुड़ा ना हो।
बिल्कुल, ये उनकी पूरी कहानी का एक हिस्सा है। खैर, अब उनके मुख्य काम और विचारों पर आते हैं।
हाँ बिल्कुल, उनकी पहली बड़ी किताब कौन सी थी?
वो थी स्पीच एक्ट्स, एन एसे इन द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, जो 1969 में आई। इसमें उन्होंने अपने गुरु ऑस्टिन के काम को और आगे बढ़ाया, उसे ज्यादा व्यवस्थित किया।
ऑस्टिन ने कहा था कि हम बोलते समय सिर्फ बातें बताते नहीं बल्कि काम भी करते हैं।
हाँ, जैसे वादा करना, माफी मांगना, आदेश देना।
सियल ने इसी को आगे कैसे बढ़ाया?
सियल ने कहा कि भाषा सिर्फ दुनिया को डिस्क्राइब नहीं करती, वो दुनिया को एक्टिवली बनाती भी है। ये बहुत बड़ा आइडिया था।
उदाहरण, जैसे वो शादी वाला उदाहरण?
हाँ वही, जब कोई अथॉरिटी वाला व्यक्ति कहता है मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनसे एक नई सामाजिक सच्चाई, एक नया स्टेटस बन जाता है।
ये तो सच में भाषा की एक जादुई शक्ति लगती है।
है ही। सीनल ने इसी को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि हर स्पीच एक्ट, हर कही गई बात के दो लेवल होते हैं।
दो लेवल कैसे?
एक तो ये कि कहा क्या गया है, उसका मतलब, उसका कंटेंट, प्रोपोजिशनल कंटेंट, और दूसरा उसे कहने में किया क्या गया है, मतलब एक्शन क्या है, इलोक्यूशनरी फोर्स।
अच्छा, जैसे अगर मैं कहूँ बाहर बारिश हो रही है, तो कंटेंट है बारिश का होना, और फोर्स क्या है?
फोर्स है जानकारी देना, दावा करना, असर्टिव। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या बाहर बारिश हो रही है, तो कंटेंट वही है पर फोर्स बदल गया, अब ये सवाल पूछना है, डायरेक्टिव।
समझ गई। और अगर मैं कहूँ मैं कल जरूर आऊंगी,
तो ये वादा करना है, कमिसिव, या बधाई हो, ये भावना व्यक्त करना है, एक्सप्रेसिव। और वो शादी वाला उदाहरण घोषणा था जिससे दुनिया बदलती है।
वाह, ये वर्गीकरण तो भाषा को समझने का एक नया तरीका देता है।
बिल्कुल। इसके बाद उनकी एक और महत्वपूर्ण किताब आई, इंटेंशनैलिटी, एन एसे इन द फिलोसफी ऑफ माइंड, 1983।
इंटेंशनैलिटी, इसका मतलब इरादा है?
नहीं, यहाँ मतलब थोड़ा अलग है। फिलोसफी में इंटेंशनैलिटी का मतलब होता है मन की वो खासियत जिससे हमारी सोच, इच्छाएं, डर, ये सब हमेशा किसी चीज के बारे में होते हैं।
किसी चीज के बारे में मतलब?
मतलब अगर आपको प्यास लगी है तो वो प्यास पानी के बारे में है। अगर आप खुश हैं तो आप किसी वजह से खुश हैं। आपका मन हमेशा किसी न किसी चीज की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसी बारे में होने, अबाउटनेस को सियल इंटेंशनैलिटी कहते हैं।
और ये क्यों महत्वपूर्ण है?
सियल ने कहा कि ये मन की एक फंडामेंटल, एक बुनियादी जैविक खासियत है। ये हमारे दिमाग से पैदा होती है और यही वो चीज है जो हमारे मन को भाषा से और दुनिया से जोड़ती है। हमारे शब्द दुनिया की चीजों को रेफर करते हैं क्योंकि हमारे विचार उन चीजों के बारे में होते हैं।
अच्छा, तो ये मन और भाषा को जोड़ने वाली कड़ी है।
हाँ कह सकते हैं। फिर आई उनकी वो किताब जिसने उन्हें और भी ज्यादा फेमस किया, माइंड्स ब्रेन्स एंड साइंस, 1984,
जिसमें वो चाइनीज रूम वाला तर्क था।
हाँ, इसी में उन्होंने अपने बीबीसी रीथ लेक्चर्स को छापा था और चाइनीज रूम तर्क को आम ऑडियंस तक पहुंचाया था।
एक बार फिर से समझाएंगे वो तर्क क्या था, बड़ा मजेदार लगता है।
हाँ हे, बड़ा स्मार्ट। सोचिए, एक कमरा है, अंदर एक आदमी बैठा है जिसे चीनी भाषा का एक अक्षर नहीं आता।
ठीक
ठीक है,
ठीक है।
उसके पास चीनी सिंबल्स को मैच करने के लिए नियमों की एक मोटी सी किताब है। अब बाहर से कोई चीनी में लिखा एक सवाल कमरे में डालता है, अंदर वाला आदमी जिसे चीनी आती नहीं, वो बस किताब के नियमों को देखता है, सिंबल्स को मिलाता है और नियमों के हिसाब से एक जवाब तैयार करके बाहर भेज देता है।
अच्छा,
तो बाहर वाले को क्या लगेगा?
बाहर वाले को लगेगा कि अरे वाह, अंदर तो कोई है जो चीनी समझता है और जवाब दे रहा है।
लेकिन असल में अंदर वाला तो बस नियम फॉलो कर रहा है, उसे तो कुछ समझ नहीं आया।
एग्जैक्टली,
यही सीएल का पॉइंट था। कंप्यूटर भी यही करते हैं, वो प्रोग्राम नियमों के हिसाब से सिंबल्स, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। इसे कहते हैं सिंटैक्स।
लेकिन क्या वो उसका मतलब समझते हैं, जिसे सिमेंटिक्स कहते हैं?
सील का जवाब था नहीं। सिर्फ नियमों को फॉलो करना, सिर्फ सिंटैक्स में हेरफेर करना समझ या सिमेंटिक्स पैदा करने के लिए काफी नहीं है। चेतना या असली समझ इस तरह काम नहीं करती।
तो मतलब चाहे एआई कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, सील के हिसाब से वो सच में समझ नहीं रहा होगा।
यही उनका तर्क था और ये आज भी एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बहस होती है इस पर।
वाकई। अच्छा, उनकी एक और किताब का जिक्र हुआ था सामाजिक यथार्थ पर।
हाँ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी, 1995। ये भी बेहद प्रभावशाली किताब है।
इसमें क्या खास बात थी?
इसमें उन्होंने समझाया कि हमारी दुनिया में दो तरह की सच्चाइयां होती हैं। एक तो वो जिन्हें वो ब्रूट फैक्ट्स कहते हैं, स्थूल तथ्य।
जैसे?
जैसे ये पहाड़ है, ये अणु है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, ये चीजें हमारे मानने या ना मानने पर निर्भर नहीं करती, ये बस है।
ठीक। और दूसरे तरह की सच्चाई?
वो है इंस्टीट्यूशनल फैक्ट्स, यानी संस्थागत तथ्य, जैसे पैसा, प्रॉपर्टी, शादी, सरकार, राष्ट्रपति का पद।
ये ब्रूट फैक्ट से अलग कैसे हैं?
ये सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम सब सामूहिक रूप से मानते हैं कि ये मौजूद हैं और इनके कुछ खास नियम और कार्य हैं।
मतलब एक कागज का टुकड़ा नोट सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब उसे नोट मानते हैं?
बिल्कुल। और हम सिर्फ मानते नहीं, हम एक तरह की घोषणा करते हैं, सील, इसे स्टेटस फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। जैसे ये कागज का टुकड़ा अब से 100 रुपए माना जाएगा,
या ये व्यक्ति अब से हमारा लीडर माना जाएगा।
हाँ, और जब ये घोषणाएं समाज में स्वीकार कर ली जाती हैं तो एक नई सामाजिक हकीकत बन जाती है। इन संस्थागत तथ्यों का वजूद भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि हमारे साझा इरादों, समझौतों और भाषा में है।
ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हमारी पूरी सामाजिक संरचना इसी तरह के माने हुए तथ्यों पर खड़ी?
सेल के अनुसार हाँ
जी।
ये सामूहिक इरादा, कलेक्टिव इंटेंशनैलिटी और भाषा की खास शक्ति है जो इन संस्थाओं को बनाती और चलाती है।
तो अगर हम सीरियल के पूरे काम को देखें, क्या कोई एक सेंट्रल आइडिया है जो सबको जोड़ता हो?
हाँ, मुझे लगता है वो है उनका बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म,
जैविक प्रकृतिवाद। ये क्या है?
उनका मानना था कि मन, चेतना, भाषा और यहाँ तक कि समाज भी, ये सब अंततः हमारी बायोलॉजी, खासकर हमारे दिमाग की उपज है। ये कोई रहस्यमयी अलग दुनिया की चीजें नहीं है।
जैसे पाचन पेट का काम है, वैसे चेतना दिमाग का?
हाँ, कुछ ऐसा ही। वो चेतना को दिमाग की एक उच्च स्तरीय उभरती हुई इमर्जेंट प्रॉपर्टी मानते थे। लेकिन, और ये जरूरी है, वो ये भी मानते थे कि चेतना को सिर्फ न्यूरॉन्स की फायरिंग तक घटाया नहीं जा सकता। उसका एक व्यक्तिपरक फर्स्ट पर्सन पहलू है जिसे आप बाहर से नहीं देख सकते।
तो वो पूरी तरह भौतिकवादी भी नहीं थे और द्वैतवादी भी नहीं?
सही कहा, वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे।
तो अगर हमें सीरियल के दर्शन के मुख्य बिंदु बताने हो एकदम निचोड़, तो वो क्या होंगे? 3-4 बड़े आइडियाज।
ठीक है। पहला, स्पीच एक्ट थियोरी। भाषा सिर्फ वर्णन नहीं करती, वो एक्शन करती है। हम बोलकर दुनिया पर असर डालते हैं।
दूसरा,
जैविक प्रकृतिवाद। चेतना दिमाग की एक असली बायोलॉजिकल चीज है, पर यह व्यक्तिपरक भी है। इसे पूरी तरह ऑब्जेक्टिव साइंस में फिट नहीं कर सकते।
तीसरा, वो चाइनीज रूम।
हाँ, चाइनीज रूम तर्क। कंप्यूटर सिर्फ सिंबल्स मैन्युपुलेट करते हैं, सिंटैक्स, वो मतलब नहीं समझते, सिमेंटिक्स, प्रोग्राम चलाना समझ नहीं है।
और चौथा, समाज वाला आइडिया।
चौथा, सामाजिक यथार्थ का निर्माण। हमारी सामाजिक दुनिया ब्रूट फैक्ट्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल फैक्ट से बनी है जो हमारे सामूहिक इरादे और भाषा से बनते हैं।
जब हम दूसरे दार्शनिकों से उनकी तुलना करते हैं, जैसे डैनियल डेनेट जो फंक्शनलिस्ट हैं।
हाँ, फंक्शनलिस्ट मानते हैं कि मन क्या है ये उसके फंक्शन से तय होता है, इस बात से नहीं कि वो किस चीज जैसे दिमाग से बना है।
कैसे अलग थे? सीरियल का जोर बायोलॉजी पर था, उनके लिए चेतना दिमाग की खास जैविक शक्तियों पर निर्भर करती है। सिर्फ फंक्शन कॉपी कर लेने से चेतना नहीं आ सकती।
और वो चर्चलैंड्स जैसे एलिमिनेटिव मटेरियलिस्ट से?
उनसे भी अलग थे। एलिमिनेटिव मटेरियलिस्ट्स तो कहते थे कि विश्वास, इच्छा जैसी हमारी आम समझ वाली मानसिक अवस्थाएं असल में हैं ही नहीं, ये गलत थियोरी है। सीरियल कहते थे नहीं, ये बिल्कुल वास्तविक है।
और द्वैतवादियों से तो वो असहमत थे ही।
हाँ, क्योंकि वो मन को कोई अलग गैर भौतिक चीज नहीं मानते थे। मन शरीर का ही हिस्सा है, दिमाग की ही गतिविधि है।
उनकी जैक्स डरीडा के साथ जो बहस हुई थी वो भी काफी चर्चा में रही थी।
हाँ, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण बहस थी, थोड़ी कड़वी भी हो गई। वो असल में दो अलग फिलोसफिकल स्टाइल्स का टकराव था,
एनालिटिक बनाम कॉन्टिनेंटल।
हाँ, सर्ल वाली एनालिटिक स्टाइल जो स्पष्टता, तर्क, शब्दों के तय मतलब पर जोर देती है, और डेरिडा की कॉन्टिनेंटल स्टाइल जो मानती है कि मतलब हमेशा बदलता रहता है, टेक्स्ट की कई व्याख्याएं हो सकती हैं, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है।
इस बहस से क्या निकला?
शायद यही कि दोनों ट्रेडिशंस के बीच संवाद कितना मुश्किल हो सकता है। हालांकि सर्ल कई भाषाएं जानते थे जर्मन, फ्रेंच भी, जो उन्हें कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी पढ़ने में मदद करता था, पर डेरिडा के साथ बात नहीं बनी।
आज के समय में सर्ल के विचारों की क्या रेलेवेंस है? क्या विरासत छोड़ी उन्होंने?
उनका असर बहुत फैला हुआ है। भाषा विज्ञान, फिलॉसफी ऑफ माइंड, AI, कॉग्निटिव साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ, कई फील्ड्स पर।
वो चाइनीज रूम तर्क तो आज भी उठता होगा AI की बहसों में।
बिल्कुल उठता है, खासकर आजकल जो ये बड़े भाषा मॉडल्स LLMs आए हैं, जैसे ChatGPT वगैरह, उनके संदर्भ में तो ये सवाल और भी दिखा हो गया है। क्या ये सिस्टम सच में समझ रहे हैं या बस बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से सिंटैक्स का खेल खेल रहे हैं? ये सील का ही सवाल था।
और उनका सामाजिक यथार्थ वाला काम?
उसने तो समाज विज्ञान में सोशल ऑन्टोलॉजी नाम का एक पूरा सब फील्ड ही बना दिया। आज स्कॉलर्स उनके दिए कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि कानून कैसे काम करता है, पैसा कैसे बनता है, मानवाधिकार जैसी संस्थाएं कैसे विकसित होती हैं।
ये भी कहते हैं कि उन्होंने चेतना को वापस फिलॉसफी के सेंटर स्टेज पर लाने में मदद की।
हाँ, ये बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। एक समय था जब कई एनालिटिक दार्शनिक चेतना को एक अस्पष्ट अवैज्ञानिक विषय मानते थे। सीरले ने जोर देकर कहा कि नहीं, ये वास्तविक है और इसे समझना जरूरी है।
तो उन्हें एक तरह का ब्रिज बिल्डर भी कह सकते हैं, अलग अलग विषयों के बीच।
हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं। उन्होंने मन, शरीर, व्यक्ति, समाज जैसे जो पुराने विभाजन थे उन्हें तोड़ने की कोशिश की, एक ज्यादा यूनिफाइड तस्वीर बनाने की कोशिश की।
उनके कुछ कोट्स से उनके विचार और साफ हो जाते हैं। जैसे चीनी कमरे पर उनका कहना था,
चीनी कमरा दिखाता है कि सिंटैक्स सिमेंटिक्स के लिए पर्याप्त नहीं है। कितना क्लियर और पावरफुल स्टेटमेंट है ना?
या सामाजिक यथार्थ पर,
सांस्थानिक तथ्य केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि हम मानते हैं कि वो मौजूद हैं। ये पूरी सोशल कंस्ट्रक्शन वाली थ्योरी का सार है।
और चेतना पर वो क्या कहते थे?
चेतना एक वास्तविक जैविक घटना है, उतनी ही वास्तविक जितनी वृद्धि, पाचन या पित्त का स्राव। ये उनके बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म का निचोड़ है, चेतना को नॉर्मलाइज करने की कोशिश।
उनके बारे में कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं शायद, जैसे उन्हें संगीत का शौक था।
हाँ, पता है, वो एक बहुत अच्छे पियानो प्लेयर थे और वो संगीत बजाने और भाषा बोलने में समानताएं देखते थे।
अच्छा,
किस तरह की समानताएं? वो मानते थे कि दोनों ही नियम आधारित, रूल गवर्न्ड गतिविधियां हैं जिनसे हम मीनिंगफुल अनुभव पैदा करते हैं। शायद ये उनके स्पीच एक्ट्स के नियमों वाले विचार से जुड़ता है।
और वो वाइन भी बनाते थे।
हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। वो शौकिया तौर पर वाइन मेकर थे, अपने घर पर उगाए अंगूरों से बनाते थे।
ये क्या दिखाते हैं उनके बारे में?
शायद ये कि वो सिर्फ अमूर्त विचारों में खोए रहने वाले दार्शनिक नहीं थे, वो दुनिया की ठोस जैविक सच्चाइयों से भी जुड़े थे। और उनका ये भी मानना था कि फिलॉसफी को सिर्फ अकादमिक पजल्स नहीं सुलझाने चाहिए बल्कि असली मानवीय सरोकारों से जुड़ना चाहिए।
और कमाल की बात यह है कि वो अपने 90 में भी काफी एक्टिव रहे।
हाँ, लिखते पढ़ते रहे, लेक्चर्स देते रहे, खासकर AI पर जो बहसें चल रही थी उनमें अपनी बात रखते रहे।
सचमुच एक प्रभावशाली जीवन और करियर।
हमारी भाषा कैसे दुनिया को शेप देती है और हम सब मिलके ये समाज कैसे बनाते हैं जिसमें हम जीते हैं।
तो चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। सील्ड ने कहा कि सामाजिक यथार्थ हमारे सामूहिक इरादे और भाषा से बनता है, ठीक?
हाँ।
तो आज ये जो नई डिजिटल दुनियाएं बन रही हैं, मेटावर्स है, AI वाले साथी हैं, ये हमारी संस्थागत तथ्यों और साझा विश्वास की समझ को कैसे बदल सकती हैं? ये बड़ा सवाल है।
क्या वर्चुअल दुनिया में बनाई गई प्रॉपर्टी या वहां बने रिश्ते उतने ही असली हो सकते हैं जितने हमारे फिजिकल दुनिया में हैं, अगर हम सब उन्हें वैसा मानने लगे जैसा सियल ने कहा था? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।